So, chapter 7 के breakdown 6 है. सेक्शन 1 में 1 से 3 उसका शीर्षक है केवल सुनो श्रवण. कृष्ण को उनके विषय में सुन के समझना, नोइंग कृष्ण बाय हियरिंग अबाउट हिम. फिर 4 से 12 देखिए, 7वां चैप्टर बड़ा रोचक है और बड़ा आसान भी है. ये देखो, अभी मैं इसका डिवीजन पढ़ूंगा ना आपको, तो आपको लगेगा बड़ा रोचक है. सेकंड जो सेक्शन है 7 से 12 उसमें आपके 6 श्लोक है, 4 से 12 उसमें आपके 9 श्लोक है, जिसमें कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां फिर 2 श्लोक है 13-14 कृष्ण गुणों को वश में रखते हैं. फिर 5 श्लोक है 15 से 19 जिसमें 4 प्रकार के लोग आज शरणागत होते और 4 प्रकार के नहीं होते, इसका वर्णन है. फिर 6 श्लोक है 20 से 25 देवताओं की शरणागति, देवताओं के प्रति शरणागति और निराकारवाद. और लास्ट 5 श्लोक जो है 26 से 30 कृष्ण को जानकर माया से मुक्ति. है ना बड़ा आसान, कुछ है ही नहीं इसमें. शुरुआत में तो सुनने का महिमा बताया है, सेकंड जो है उसमें तो शक्तियां है बस, भगवान की भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति कौन सी है. और बाकी के 2 श्लोक में ये बताया है कि देखो गुणों को भी मैं ही कंट्रोल में करता हूँ, मेरे शरणागत हो जाओ. अभी शरणागत में भी 4 प्रकार के है जो आते हैं और 4 आते हैं नहीं आते. तो 4 लोग आते हैं वो कौन से है, और 4 जो नहीं आते वो कौन से है वो बता दिया. अच्छा फिर वो देवताओं को शरणागत वो कौन, वही भगवान ने बता दिया वो लोग ये है. और जो लोग निराकार को मानने वाले तो भगवान बता वो भी बता दिया फिर. अच्छा तो ये दोनों चीज जो बता दिया, और उसके बाद फिर कहा कि ये शरणागति जो मुझे शरणागत होते है उनको क्या फायदा होता है, वो भगवान बता दिया. मेरे शरणागत होते तो माया से मुक्त हो जाते, हो गया चैप्टर खत्म. है क्या इसमें सिंपल ऐसा होना चाहिए, दिस इज द वे. 7वां चैप्टर 10 मिनट में खत्म हो गया.
ऐसा
होता है,
ऐसा कभी कभी मैंने भागवत कथा में सुना है कि पूरे 3-4 घंटे में भागवत कथा की 4 लाइन और बाकी सब कुछ दुनिया का और खत्म. फिर ऐसे अध्याय पूरा स्कंद ऐसे खत्म कर देते हैं कि हाँ भाई फिर इसके बाद ये हुआ ये हुआ, फिर उसके बाद फिर सब खत्म,
बाकी का जो समय है ना उसमें दुनिया भर की बातें होती है। यस, तो यहाँ पर एक्चुअली अगर हम खुद ही ऐसा मानते रहेंगे ना हमेशा कि भगवद गीता बहुत कठिन है, भगवद गीता बहुत कठिन है, तो आपको कठिन लगेगा। लेकिन अब 700 पेज का बुक, 700 स्टॉक ज्यादा तो है भी नहीं। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बुक देखो, मेडिकल लाइन की बुक देखो, मैनेजमेंट की बुक देखो, आप देखो उनकी बुक कैसी कैसी होगी, और उनके सामने बिचारी भगवद गीता तो ये छोटी सी बुक है, इसमें कौन सा बड़ा पर्वत है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, केवल फायदा यही है कि इसको भक्त के साथ बैठ करके समझने में बड़ा फायदा है, अकेले समझने के जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये ज्यादा फायदा है। एसोसिएशन, भक्त की संगति में अगर सीखोगे इसको तो अधिक फायदा प्राप्त होगा। सो सातवें चैप्टर की शुरुआत स्वयं भगवान खुद ही कर देते हैं, सीधा श्री भगवान वाच से ही शुरू होता है, अर्जुन ने पूछा भी नहीं था। तभी सुनो भगवान क्या कहते हैं, चैप्टर टेक्स्ट नंबर 1।
श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो।
हाँ, यहाँ पर स्पष्ट बताया भगवान, तुरंत बोल दिया किस तरह से मेरे चेतना में स्थिर हो करके, मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन, मैं आसक्त मना पार्थ, क्योंकि हमारा मन अभी बहुत जगह पर आसक्त है, अलग अलग स्थान में विचलित है। अब क्या बोलते हैं, बहुशाखा यनंताश्च बुद्धिर अव्यवसायिना, जिसका मन है बहुत शाखाओं में विभक्त है, ये भी करना है वो भी करना है, ये भी करेगा वो भी करेगा, वो व्यक्ति का बुद्धि स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को आसक्त करके, मैं आसक्त मनः पार्थ योगम योजन मदाश्रय, मुझ में आश्रय लेकर, मेरा आश्रय लेकर के तुम किस तरह से योगम योजन मदाश्रय असंशयम बिना शंका से समग्र मुझे पूर्ण रूप से तुम प्राप्त कर सकते, यथा ज्ञाच्छसी, इसको समझ सकते हो तुम ज्ञाच्छसी तच्छृणु, अब सुनो ये सुनो, उसको सुनो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एकदम पूरा भक्ति योग का डेफिनेशन, योगम यूनियन मदाश्रय समग्र मई आसक्त, ये सारे शब्द का उपयोग इसी के लिए हुआ है कि तुम मेरे भक्त बन करके, मेरे आश्रय में लेकर के मेरे विषय में समग्र जानकारी प्राप्त करो, किस किस माध्यम से, तत्सुनो सुनो, हियरिंग, सुनने के माध्यम से, कृष्ण के विषय में सुनने से श्रद्धा तीव्र होती है। कई बार हम लोग इस बात को इतना समझ नहीं पाते कि सुनने का इतना क्यों बार बार बोला जाता है, सुनो सुनो सुनो, क्यों, क्योंकि सुनने से हमारी श्रद्धा जो है वो स्थिर होती जाती है, बार बार सुनने से श्रद्धा स्थिर होती जाती है। भौतिक दृष्टि में भी ऐसा देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि में से क्या, भौतिक दृष्टि से मैं भी आपको जो चीज बार बार देखने को आती है आप उसको मानने लगते हो, है ना। तो आध्यात्मिक में तो भगवान कहते हैं इसको सुनना चाहिए, बार बार सुनने से आपका मन जो है वो भगवान में आसक्त हो जाएगा। जैसे पूर्व काल में कोई ऐसा उदाहरण आप देना चाहते हो कि जिसने सुना बहुत और आसक्त हो गया भगवान के, देखा नहीं था अभी तक, दो एग्जांपल दे दो कोई भी।
प्रहलाद,
हाँ प्रहलाद, सबसे बड़ी तो
साउथ का एक टेम्पल है, तो उसमें वहाँ एक बहुत पैसा वाला इंसान था, वो कृष्ण के साथ जा रहा था, तो कुछ एक भक्त ने उन्होंने बोला कि तू इतना इसमें आसक्त क्यों है, जा उस मंदिर में जाके आ तो तुम्हें पता चलेगा। तो वो मंदिर में भगवान के दर्शन किए, भगवान का रूप देखे, उतना आसक्त हो गया को वैष्णव को छोड़ दिया।
ओके, वेरी गुड। रुक्मणी देवी, उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं देखा था रुक्मणी देवी ने, और नारद मुनि से सुनते 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 यही मेरे पति हो सकते हैं, और कोई पति नहीं हो सकता। रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा था, लेकिन हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते 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 बिना देखे ही मन में निश्चय किया था कि मेरे जीवन का लक्ष्य चैतन्य महाप्रभु का चरण है, मैं अपने लाइफ को उनके चरणों में समर्पित हूँ। और देखा नहीं था अभी तक, केवल सुनने से ही उन्होंने किया था। तो सुनने से, केवल महिमा सुनने से यू नो ये ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई। और हम भी, हम तो वही कार्य में लोग है ना, हम लोग कर क्या रहे हैं? हमने कृष्ण को आज तक, मैं तो नहीं इतना भाग्यशाली को देख पाया हूँ कृष्ण को, राइट। लेकिन अगर साधारण दृष्टि से देखा जाए तो हम सब नहीं देख सकते अभी कृष्ण को, राइट। लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं। बार बार सुनने से मन जो है वो आसक्त हो जाएगा कृष्ण में। अरे भाई, इतना इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना दयालु है, इतना ये हमारा स्वामी है, असली स्वामी है, सबका ख्याल रखता है, मेरा भी ख्याल रखता है। बार बार सुनने से भाई ऐसे व्यक्ति को तो प्रेम करना ही चाहिए। तो इस तरह से मन जो होता है वो धीरे 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 इसके प्रति आकर्षित होता है। और इससे एक बहुत बड़ी चीज हमें प्राप्त होती है, वो होती है श्रद्धा। सुनने से श्रद्धा स्थिर होती है, अधिक समय सुनने से अधिक श्रद्धा स्थिर होती है। जो अगर आप बार बार श्रवण करते हो, बार बार एसोसिएशन बोलते हैं ना, मैं संग करो संग करो, संग में आपको सुनने का प्राप्त होता है, सुनो। तो सुनने से क्या प्राप्त होता है कि आपकी श्रद्धा स्थिर होती है, फिर आप माया से आकर्षित नहीं होंगे, आपको माया का प्रभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हो। कई बार अगर प्रभु जी क्या बार बार, आई मीन ठीक है, जानता हूं ये चीज, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जानता हूं मैं। और फिर लेक्चर में बैठे लेक्चर बताया, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। इनाफ, आई नो दिस, मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी ये श्रवण करना पड़ता है। क्यों? श्रद्धा स्थिर करने के लिए।
मानने लगे, पहले जानता है फिर मानता है।
हाँ, और फिर अनुभव भी करने लगे। ये परिणाम होना चाहिए। आपको बोले भाई, वाई यू आर रिपीटिंग द सेम पॉइंट, यू नो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फर्दर देन दिस, क्या करें। हाँ, बोलिए।
आपने जो बताया वही चीज प्रभुपाद जी लेक्चर में बार बार कह रहे थे। एक डिबेट में बोला, प्रभु जी आप हर बार कहते हो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये हम बात जानते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, अगर आप ये जानते हो तो क्या आपके कार्य आत्मावत है? हाँ। तब वो डिबेट कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसा कार्य आत्मा कर सके, इसलिए
इसलिए बार बार सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिक अधिक सुनना। और जब कृष्ण के भक्तों के पास जाओगे, मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले कि जब वरिष्ठ भक्त के पास जाते हो तो बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। क्योंकि ऐसा भाग्य हमें प्राप्त होता है कि उनके मुख से कृष्ण संदेश, कृष्ण लीला, कृष्ण कथा, ये हमें सुनने को प्राप्त होता है। तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है तो सुनो, और सुनो, अधिक सुनो, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तब सुनो, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। सुनने से श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनाय, ये हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसको कहीं और ढंग से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसको बाहर लाने, अगर आपको कृष्ण भक्त प्रेम आपके हृदय से उजागर करना है तो श्रवण आदि सुनो, तभी आपका प्रेम उजागर होगा, अन्यथा ये उजागर नहीं होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपूर्ण, उसका साधन कोई नहीं है उसको प्रेम को बाहर लाने का। जैसा हम एग्जांपल देते हैं कि जब कोई कुआ होता है, हैंडपंप होता है, उसमें पानी अगर कहीं नहीं आता तो पहले के समय गांव में हैंडपंप हुआ करते थे, पता है आपको? तो उसमें पानी नहीं आता तो वो आपको कोई मैकेनिकल को, मैकेनिक को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। आजकल किसी से कुछ आता नहीं है तो सीधा फोन लगा दिया, बड़ा खराब हो गया है, इसको सेट कर, कुछ नहीं करना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, लोटा भर के खो गया। और पानी डालोगे तो अपने आप पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अभी यहाँ पर अटक गया है, एयर आ गई है इसके अंदर, पानी में एयर आती है ना, तो ये एयर आ गई है हमारे यहाँ कृष्ण भक्ति में। यहाँ पर है कृष्ण भक्ति, इधर हृदय में है कृष्ण प्रेम है, लेकिन हमारे चेतना में नहीं आया अभी तक। क्यों? उसमें एयर घुस गई है बीच के, तो क्या करे, इसको पानी डालना पड़ेगा ऊपर से। तो पानी कहाँ है, पानी वही जो अंदर है कुएं में, अंदर हैंडपंप में आता क्या है बाहर, पानी तो आता है बाहर, थोड़ा सा ऊपर से डालना पड़ता है और क्या, थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल दो तो अंदर वाला पानी बाहर आने लगेगा। तो अंदर वाला पानी जो बाहर लाने के लिए ऊपर वाला जो पानी है वो यहां से आता है, वो सुनने से आता है, वो जैसे थोड़ा श्रवणम करते हैं और तो सीधा आपके हृदय में जाता है और सीधे अंदर से फिर पानी आपका हृदय और कृष्ण भक्ति में मैं कैसे जुड़ गया, वो कुछ किया नहीं, वो गुरु जी ने थोड़ा कान में पानी डाल दिया आपके बस। कौन सा पानी डाला, तब कथामृतम, आपका कथामृत, कृष्ण का कथामृत ये आपके हृदय में डाल दिया, वो अपने आप भक्ति के हृदय में। तो इसलिए सुनना बहुत ही आवश्यक है, सुनना चाहिए, नहीं तो सुनने से श्रद्धा फिर कमजोर हो जाती, नहीं सुनने से। हाँ, फिर टेक्स्ट नंबर टू।
अरे हूँ तने पूर्ण रूपे इंद्रिय गम्य तथा दिव्य एम बन्ने ज्ञान विषय कहीश, आ जाण्या पछी तारे जाणवा योग्य कशुज बाकी रहेशे नहीं।
हाँ, ज्ञान भी सिखाऊंगा अर्जुन और विज्ञान भी सिखाऊंगा, दो चीज। तो कई बार इसको बोलते हैं थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं समझ लो कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको गुलाब जामुन बनाना है या रसगुल्ला बनाना है, समझ लो मैं आपको रेसिपी बताऊं, तो पहले आपको बताऊंगा कि आपको इतना दूध लेना पड़ेगा, उसको फाड़ना पड़ेगा, इसका पनीर बनाना पड़ेगा, फिर इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा, सब स्टेप बताता हूँ। ये हुआ सब थियोरिटिकल। अब फिर प्रैक्टिकल क्या है, हाथ में दूध लो, बनाना शुरू करो और धीरे धीरे फिर वो उबलेगा, फिर उसको सॉफ्ट स्पंजी बनेगा और फिर उसको शुगर के पानी में डुबो दो। ये हुआ प्रैक्टिकल, राइट। अर्थात जो चीज आप सुनते हो, सीखते हो, ग्रहण करते हो, इसको आपको व्यवहारिक रूप से जब तक आप इसका उपयोग नहीं करते तब तक वो चीज आप बता रहे थे ना, याद नहीं रहता, तब तक ऐसा रहेगा, याद नहीं रहेगा, तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर मैं रोज सुबह आपको कहता हूँ कि कुर्ता ऊपर ही पहनना है, कुर्ता ऊपर ही पहनना है, जब तक आप खुद कुर्ता ऊपर पहनना रोज शुरू नहीं कर देंगे तो आपको तब तक वो थियरी रहेगा, isn't it? एग्जाम्पल के रूप में बता रहा था मैं आपको। ऐसे कई चीज होती है कि आपको जब तक उसका उपयोग करोगे नहीं तब तक उसका वो आएगा नहीं आपको, ये कैसे किया जाता है ना। आप देखो आजकल तो जो प्राउड उम्र के लोग जो है या 50 को क्रॉस करे वो लोग भी घंटों बिता देते हैं सोशल मीडिया में, है ना, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर घंटों बिता देते हैं, दो तो तीन तीन घंटा बिता देते हैं, चार चार घंटा बिता। अरे भैया तुम कब सीखे, अरे नहीं आता था कि फेसबुक वगैरह कुछ नहीं आता था, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं आता, और आज घंटों बिता सकते हो, कैसे,
अभ्यास योग करके।
आपने प्रैक्टिकली कर हाथ पांव मारना शुरू किया, अभी हाथ पांव मारना शुरू किया तो आ गया। तो इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैसा होता है, भगवान को उनकी शक्तियों के सही समझना, इसको पूर्ण ज्ञान बोलते हैं। केवल भगवान अपनी शक्तियों से अलग नहीं है। जब आप प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहते हो तो फिर सब जानना पड़ेगा ना आपको, उनके सेक्रेटरीज कौन है, उनके डिपार्टमेंट कौन से वो करते हैं, सब इन्फॉर्मेशन तो पूरी लेनी पड़ेगी ना फिर। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द फेनोमेनल वर्ल्ड, द स्पिरिट बिहाइंड इट एंड द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एक तो जो दृष्टिमान जगत है उसके भीतर जो आत्म तत्व स्थिर है, और ये दोनों शक्तियों का जो उद्भव स्थान है, ये तीन चीज को जानना, यह संपूर्ण ज्ञान। आप समझे ना कौन सी चीज, दो चीज, दो शक्तियों और उसका स्वामी भगवान, तब जाके। और रामानुजाचार्य कहते हैं कि विज्ञान शब्द का अर्थ होता है कृष्ण के स्वरूप को जानना, कृष्ण के रूप को समझना, इसको भी विज्ञान कहा जाता है। कृष्ण का रूप है, कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण अलग अलग, यू नो व्हेन यू वांट टू नो कृष्ण इन फुल यू मस्ट नो एवरीथिंग। कृष्ण के सारी आप भौतिक शक्ति को भी जानना है और आध्यात्मिक शक्ति को भी जानना है, दोनों शक्ति, उसको बोलते हैं ज्ञानम और सभी ज्ञानम, यू नो साथ में मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। सो इधर क्लियर, एक पदार्थ जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ और दोनों का स्वामी, ये है पूर्ण ज्ञान। सो टेक्स्ट नंबर 3,
कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता।
हाँ, बहुत दुर्लभ है वो व्यक्ति जिसको ये समझने का, जिसने प्रयास किया है समझने का। कौन सा ज्ञान? टेक्स्ट नंबर 2 वाला ज्ञान, यू नो जो टेक्स्ट नंबर 1 और 2 में जो ज्ञान बताया था वो भगवान ने 3 में उसका डेफिनेशन या डिस्क्राइब किया था, 3 में, अभी 2 में डिस्क्राइब किया और 3 में फिर भगवान ने बता दिया क्या, कोई एक ही व्यक्ति टेक्स्ट नंबर 1 और 2 को समझ पाता है। अर्थात टेक्स्ट और 1 और 2 में जो बताया है ऐसा ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कौन कौन? मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है। और यतताम भी सिद्धानाम कश्चिन माम व्यती दत्त होता, हजारों में से कोई एक व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास करता है और ऐसे हजार जानने वाले में से कोई एक जान हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रह्म रियलाइज इम्पर्सनलिस्ट और द पर्सनल और परमात्मा रियलाइज योगी टू अंडरस्टैंड कृष्ण द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडहेड एज द सन ऑफ मदर यशोदा और द चैरिटी ऑफ अर्जुन इवन द ग्रेट डेमिगॉड्स आर समटाइम्स कंफ्यूज अबाउट कृष्ण मुयन्ति यत् सूरयः। तो महान लोग भी इसमें फंस जाते हैं, नहीं समझ पाते कृष्ण को, बड़े बड़े लोग योगी नहीं समझ पाते। पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, पंथास्त कोटि शतवत्सर, करोड़ों करोड़ों साल तक कोई व्यक्ति प्रयास करे, कोटि पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनि पंगवानम, बड़े बड़े मुनि मन की गति, वायु की गति से भी मन की गति श्रेष्ठ है। वायु की गति में क्या होता है कि वो इतना तेज नहीं जा सकता, लेकिन मन तो 1 सेकंड में इधर से उधर जा सकता है। ऐसे मन की गति से फुल स्पीड में अगर ट्रैवलिंग भी करे कोई व्यक्ति, फिर भी भगवान को पहुंच नहीं पाता, भगवान को तक भगवान को समझ नहीं सकता। सोप्यस्त यत प्रपद सिम्या अविचिंत्य तत्वे, अविचिंत्य फिर भी उनके लिए अविचिंत्य, वो समझ नहीं सकते इस चीज को, ऐसे गोविंद भगवान बहुत मुश्किल है। वेदेशु दुर्लभम, वेदों का सहायता लेने वाले जो नियमों का पालन करने वाले वो लोग समझ नहीं सकते। आप देखो कृष्ण भक्ति अहमदाबाद में कितने हजारों लोग, लाखों लोग हैं, कितने लोग को कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट है ना? आप लोग प्रयास करोगे कितना भी करोगे फिर भी कई बार तो भक्त लोग कहते प्रभु जी फैन निकल जाता है किसी को 16 माला तक पहुंचाने में, इतना प्रयास करना पड़ता है, इतने धक्के लगाने पड़ते हैं और क्या क्या करना पड़ता है एक व्यक्ति को 16 माला तक पहुंचाने के लिए, परिश्रम हो जाता है, बड़ा परिश्रम ना है ना। आप लोग को किसी को अनुभव होगा किसी को 16 माला तक पहुंचाना है तो बहुत बड़ी है ना सिद्धि है अपने आप में। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु, ऐसा हजारों कोई होते हैं उसमें से कोई एक। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था कि आपके आपकी संस्था में भक्तों की संख्या कम क्यों है, ज्यादा होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपके शहर में ज्वेलर्स कितने हैं, सोने के हीरे की पहचान सबको थोड़ी होती है, रेयर लोग ही होते हैं कि जो हीरे की महत्ता समझ, बाकी सबके हीरा जो समझेगा उसी को उसका मूल्य है, जो नहीं समझ पाएगा उसका क्या मूल्य है। तो इस तरह से भगवान के पास जाना है ना, या उनको समझने का प्रयास करना, ये महात्मा बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। जैसे समझ लो कि कुछ लोग अगर जेल में कोई व्यक्ति है और जेल में कोई मंत्री या कोई आता है तो क्या वो प्रिजनर बन जाता है? नहीं। अगर साधारण लोग हम ऐसा सोचेंगे कि देखो ये भी जेल में आ गया, तो वो तो ज्ञान अपूर्ण है, राइट। पर अस्पताल में कोई आता है चेक करने के लिए तो डॉक्टर भी तो होते हैं अस्पताल में, तो इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि वो भी मरीज है, राइट। तो इस तरह से हम सब इतने बद्ध है, इसलिए भगवान को अधिकतर लोग तो समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं सकते कि भगवान जब कभी अवतार भी लेते हैं फिर भी वो मनुष्य नहीं बनते। ब्रह्मा जी परेशान हो गए थे, ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान को। जानते हो भगवान, इंद्र तो गलतियां करता ही रहता है, इंद्र तो चलो इंद्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इंद्र का इतिहास में तो ऐसा है कि उसने बहुत बार गलती किया, इसलिए उसको तो चलो प्रैक्टिस है। उसने वो क्या किया था कि वो स्वर्ग में से पानी डाला था, वो सामर्थक में एक जगह बोले यज्ञ बंद करवा दिया था, तो भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा, तो अर्जुन इंद्र नहीं समझ पाया, बाद में पता हो तो गलती हो गई और प्रभु क्षमा कर दी, क्षमा कर दी। और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की भगवान के सामने क्या करूं। अरे ठीक है, तू गाय को लेके जा साथ, आगे गाय को रखना सुरभि को और पीछे तू खड़ा रहना, तब जाके शायद कृष्ण तुम्हारी बात मान ले। और कृष्ण को इग्नोर किया पूरा, इंद्र आया सुरभि आई, इग्नोर, फुल इग्नोर, कुछ देखा तक नहीं उसको, बट टाइम भी कट रहा है मेरा, यूजलेस। बाद में फिर भगवान बोले ठीक है ओके वो जाएगा। तो इस तरह से इंद्र ऐसा किया, उसके बाद भी दूसरी बार भी ऐसा हुआ, वो वहां पर गए भौमासुर का वध करने के लिए, तो वहां पर भौमासुर ने इंद्र की माता का वो चुरा लिया था, इयररिंग्स कुंडल चुरा लिया था, तो वहां पर जाके भौमासुर को खत्म किया और कुंडल ला के दी, तो वाह वाह कृष्ण थैंक यू सो मच, उनका प्रणाम किया, पूजा किया, अपने आसन बिठा, आप मेरे आसन पे बैठिए, आपके लिए एक ही आसन यहाँ पर श्रेष्ठ है। इंद्र को आसन पे बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनकी पूजा की, सब सारे द्वारकाधीश हमारे यहाँ कहाँ से, कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य। 5 मिनट के बाद फिर भगवान वहां से आगे चलने लगे, भगवान सत्य भामा ने कहा कि मुझे यहाँ पर ये पारिजात वृक्ष मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको ले जाऊं। अरे इसको तुम इसको नहीं ले जा सकते तुम, बोले क्यों नहीं ले, बोले स्वर्ग का वृक्ष है, बोले नहीं मैं तो मेरे वाइफ ने बोला है तो मैं तो ले जाऊंगा, बोले सब लोग यही करते तो मैं तो ले जाऊंगा, जो इंद्र बोले नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान सोचे अभी 2 मिनट पहले मेरा चरण धो रहा है, अभी चरण धो रहा था, बोलता युद्ध करना पड़ेगा, हाँ ठीक है चलो युद्ध करते, युद्ध किया, इंद्र हार गया। तो इंद्र ऐसे गलतियां करता रहता है, ब्रह्मा जी से ऐसी आशा नहीं की थी, अब ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। अब ब्रह्मा जी सोचे कि ये मेरा बॉस लेफ्ट हैंड में खाना रखा है, वो लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड से खा रहा है, राइट हैंड से खाना चाहिए ना, ये तो संस्कार है सर, लेफ्ट हैंड से खा रहा है, और कैसे क्या खा रहा है, दूसरे के प्लेट में से भी खाता है। अरे दूसरे के तो भगवान है, दूसरे के प्लेट में से कैसे खा सकता है, उसका जूठा है, मैं नहीं खाता कभी किसी का प्लेट का जूठा, और ये कैसे खा रहा है, और बच्चों के साथ खेल रहा है, भंवरे की नकल कर रहा है, मंकी की नकल कर रहा है, मंकी जैसा फेस, इम्पॉसिबल, ये मेरा स्वामी हो ही नहीं सकता, ये भगवान हो ही नहीं सकता।
प्रभु जी मुंह से निकाल के खाता देख के ब्रह्मा जी,
हाँ वो इसके मुंह से निकाल कर
निकाल के खा रहे
बाबा, ये तो हो ही नहीं, ये तो भाई ही हाउ कैन ही माई बॉस, ये इनके सामने मुझे नहीं तो मस्त होने का, इम्पॉसिबल। लेकिन सब लोग इसको भगवान बोलते हैं, लेट मी टेस्ट, चेक करते,
प्रचंड माया
है। ओ वाह वाली वाह, वो ब्रह्मा जी ने उठा लिया, चुरा लिया इसको, भगवान को वालों को उठा दिया, गैयों को चुरा दिया। अब भगवान बोले मैं देखने गया गैयों तो गैये खत्म, आई मीन है ही नहीं कोई इधर, अब वापिस आया तो यहाँ पर ग्वाल वाल भी गायब, दोनों हो क्या रहा इधर, सही करके गांव है। ये अपना वृंदावन है ना, कृष्ण बजरा मंदिर, उससे थोड़ा सा आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहां पर ये एक गांव है सही, वहां पर ये सब हुआ था, यमुना के तट पे ही है, तो ये सब लीला उधर हुआ था। तो सोचने लगे कि ये हुआ कि, फिर बोले किसने किया ये कार्य, ओ ब्रह्मा आप यू कैंट यू अंडरस्टैंड, यस ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं जानंतु एवं जानंतु, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ वो भले जाने, लेकिन मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा ये डिक्लेयर करता हूँ आज कि मैं भगवान को नहीं जानता मैं भगवान को नहीं समझ सकता हूँ। अब भगवान ने उठा लिया जब बच्चों को चोरी कर लिया, तो फिर बाद में पता पड़ा कि एक्चुअली भगवान को समझने के लिए, कथा तो लंबा है लेकिन भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा होना आवश्यक है, भगवान को समझने के लिए आपको उनका शरण भी लेना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा और उनकी कृपा होना आवश्यक है। जब तक वो खुद आपको हेल्प नहीं करेंगे ना, आप समझ नहीं पाएंगे उनको। और ब्रह्मा जी बोले मोहित हो गए थे, अभी कहाँ ये जो सेकंड ये पूरा बन गया प्लॉट, ये कहाँ से आया, बिल्कुल यू नो कॉपी एकदम क्लोन किया हुआ, यू नो एग्जैक्ट कॉपी, वही मधुमंगल वही सब कुछ कह रहा, असली कौन इसमें से, जो मेरे पास है वो असली सेट है या कृष्ण के पास है वो असली सेट है, ऐसा लग रहा है कि असली सेट के बदले में नकली सेट चुरा के लेके आ गया और असली सेट तो इधर ही छोड़ दिया, ना ना ऐसा तो नहीं, शायद हो सकता है कि मेरे पास जो है वो असली सेट होगा और कृष्ण के पास शायद नकली सेट होगा, फंस गया बेचारा ब्रह्मा जी, अब क्या करे। फिर भगवान ने बताया, देखो तुम देखना चाहते हो ना ऐश्वर्य, यहाँ पर कृष्ण की कृपा हुई, ब्रह्मा जी को कृपा किया, दिखाया मेरा ऐश्वर्य देखो तुम, और जब ऐश्वर्य देखा तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके आ गए स्तुति मारने के लिए, और प्रणाम किया, दंडवत किया, स्तुति किया और बहुत सुंदर स्तुति किया। ब्रह्मा जी का स्तुति सबसे अच्छी स्तुतियों में से एक है, अगर आप श्रीमद भागवतम की स्तुतियां देखोगे पूरे 1 से 12 कैंटों में, उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा जो की गई स्तुति है ना वो बहुत ही सुंदर है, वेरी नाइस प्रेयर्स, बहुत सुंदर स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। तब जाके भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि क्यों कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, जब तक भक्ति योग के माध्यम से नहीं जुड़ता, जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं है ना तब तक वो भगवान को समझ ही नहीं सकता, कैनॉट अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़े आपका हृदय में आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है और भक्ति है, बस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जय जय द्विज पत्नी नागा कन्यागण भक्ति ते जहारा पाए लो, भक्ति ते जहारा नागा कन्यागण, द्विज पत्नी का अर्थ होता है जो सबसे पढ़ी लिखी होती है, ब्राह्मण की पत्नी है द्विज पत्नी तो बड़ी विद्वान होनी चाहिए ना, तो द्विज पत्नी नागा कन्यागण, और नागा कन्यागण का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अनपढ़, इनको कुछ नहीं आता, नाग कन्या को आप क्या उनका कुछ, वो तो कोई गुरुकुल में गए नहीं होते, काले साग द्विज पत्नी, जय जय द्विज पत्नी और नाग कन्यागण, लेकिन ये वहाँ द्विज पत्नी से लेकर के नाग कन्यागण के जितने भी लोग है एग्जाम्पल देकर के बताया, भक्ति से जहां रह पाई लोग गोविंद चरण, उन लोग ने आपके चरण प्राप्त किए, एकमात्र उनका क्वालिफिकेशन था उनके हृदय में आपके प्रति भक्ति थी, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, तब जाके आप भगवान को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकते हो, तब ठीक है, तब भगवान आपको पूरा दिन मेहनत करो यशोदा माता की तरह रस्सी से बांधो, जब पूर्ण रूप से थक जाओ, आपका पसीना पसीना हो जाए, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत की कृष्णा, अब तो कृपा करो, ठीक है बांध दो, तो बांध लिया, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, तभी जाके कृष्ण का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। अभी 4 नंबर के श्लोक में भौतिक शक्ति का वर्णन आता है, वो पढ़िए।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं,
यस। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब भौतिक शक्ति की बात होती है तो अष्ट धातु अष्ट चीजों से बनी हुई है। ये श्लोक आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, भूमि आपो नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकारम इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इसमें पांच ग्रॉस स्थूल तत्व है और तीन सूक्ष्म तत्व है। पांच भूमि रापो नलो वायु खम, ये पांच स्थूल है और तीन सूक्ष्म है मन बुद्धि। सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है जिसको आप देख नहीं सकते, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो सूक्ष्म स्थूल नहीं है। ये बाकी के जो पांच है उसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा हो सकता है। जैसे उसमें पांच 24 तत्व होते हैं टोटल भौतिक सृष्टि के, पांच पांच तत्व ये पंच महाभूत, फिर पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच विषय, मन बुद्धि अहंकार और महत्त्व। तो ये 24 तत्व हुए। ये हुआ प्रकृति अष्ट, ये बहिरंग शक्ति भगवान की अपरा शक्ति। 24 तत्व आप समझ पाए कौन सी, पांच महाभूत, फिर पांच ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता हो, स्पर्श रूप, ठीक है, ये पांच। और फिर कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जो है वो है हमारे, और फिर है
विषय,
विषय है ना, आंख से देखना होता है, कान से सुनना होता है, हाँ शब्द। तो अभी ये पांचों जितने भी विषय है अगर आप उसको देखोगे तो ये पांचों के जो पांचों है वो स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले सृष्टि होती है आकाश की, खम सबसे पहले, उसमें शब्द है जिसको आप सुन सकते हो, शब्द, उसमें और कुछ नहीं, उसमें ना रूप है ना रंग है ना कुछ नहीं, वो केवल सुन सकते शब्द है। उसके बाद जो सेकंड अब सेकंड जो एक्सपांसन होता है उस वो होता है वायु,
स्पर्श,
जिसमें शब्द और स्पर्श दोनों होता है। फिर तीसरा होता है अग्नि, जिसमें शब्द भी है स्पर्श भी है और रूप भी है, ये प्लस होता है, एक से वन प्लस वन हो रहा है यहाँ पर, माइनस नहीं हो रहा कहीं पर भी। फिर रूप से आगे है स्वाद,
रस,
जिसमें पानी आता है, भूमि रापो अनलो, भूमि रापो राप, भूमि रापो नलो वायु रापो, तो ये जल। और फिर गंध, भूमि में गंध है, तो भूमि में गंध के अलावा बाकी सब कुछ है, गंध भी है रूप भी है स्पर्श भी है मिस वायु भी है और शब्द है, हाँ पांचों में जितनी भी है वो सब पृथ्वी में है। तो इस तरह से शांत सत शांत, ये पांच रस जो है ना हमारे भक्ति के वो भी इसी तरह से है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो जो शांत में है वो शांत में ही है लेकिन वो दास्य में नहीं, लेकिन शांत और दास्य में शांत भी है और दास्य भी है, फिर सख्य में शांत भी है दास्य भी है और सख्य भी है, और वात्सल्य में भी इस तरह से पीछे के तीनों का है, सख्य भी है और वात्सल्य भी है, और अंत में माधुर्य में पीछे के चारों का है। माधुर्य जो है वो पूर्ण रूप से सभी रसों का अंतिम सार माना जाता है भक्ति में। इसकी चर्चा हम भक्ति रसामृत में करेंगे, इस विषय की चर्चा। और मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म है जिसको आप देख नहीं पाते, ये है निम्न प्रकृति और एक है ये अपरा प्रकृति है और एक है परा प्रकृति, है ना, वो आप पढ़िए पांच नंबर।
महत्त्व आपने बताया ना लास्ट
में, महत्त्व,
महत्त्व एक्चुअली क्या है, क्योंकि महत्त्व के बारे में
हाँ रॉ मटेरियल
उसमें से सब निकलता है,
रॉ मटेरियल मीन्स जितने भी ये आठ चीज है ना उसका कच्चा स्वरूप जो महत तत्व अर्थात एक समझ लो कि सब चीज एक साथ सृष्टि के सर्जन से पहले रॉ मटेरियल के रूप में रहती है, उसको फिर भगवान दृष्टिपात करते हैं और तब जाके उसमें आत्मा का प्रवेश होता है और तब जाके सृष्टि का सर्जन होता है। इसे महत तत्व ऐसी अवस्था जो सर्जन के पहले की अवस्था है वो महत तत्व है। तो ये सेपरेटेड भिन्न यहाँ पर एक शब्द है भिन्न शब्द भिन्न प्रकृति प्रॉपर इसको इस चीज को थोड़ा बल भी दिए है कि सेपरेटेड का अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से आप कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते नहीं देख सकते अनुभव नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का अनुभव इन शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता ये बहिरंग शक्ति के माध्यम से, इसलिए इसको भिन्ना बोला गया है भिन्ना प्रकृति दृष्टिता भिन्ना सेपरेटेड। प्रॉपर एग्जांपल पे दिया जैसे अभी यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है राइट प्रॉपर एग्जांपल दिए थे इसका ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग जब एक बार खत्म हो जाए और फिर आप इसको MP3 के रूप में कहीं पर भी ले जा सकते हो फिर अगर आप उसको प्ले करोगे तो इसमें आवाज मेरी आएगी मैं ही बोल रहा हूं लेकिन ये मेरी भिन्न प्रकृति हुआ शक्ति इसमें अलग मैं नहीं बोल रहा हूं ये भिन्न प्रकृति सेपरेटेड हालांकि है इसमें मेरी शक्ति मैं नहीं बोला हुआ है इसके अंदर लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं इसके अंदर इसलिए इसको बोलते हैं भिन्न प्रकृति सेपरेटेड अर्थात डायरेक्टली आप कृष्ण को उनके इस प्रकृति के माध्यम से कृष्ण को आप अनुभव नहीं कर सकते प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से कर सकते हैं कृष्ण सब जगह है विराट रूप के माध्यम से परोक्ष रूप से कर सकते लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव इस शक्ति से नहीं हो सकता इसलिए इसको भिन्न प्रकृति बोला गया है। मैं एक श्लोक और लेता हूँ पांचवा फिर विस्टॉप पांचवा
हे महाबाहु अर्जुन इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराध प्रकृति के साधनों का दोहन करता है।
हाँ इसके अलावा और एक प्रकृति भी है अब अपरयाम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम मुझसे एक दूसरी एक प्रकृति भी है जिसको अपरा प्रकृति बोलते हैं वो आत्मा से बनी हुई सच्चिदानंद है वो मेरी अंतरंग शक्ति है यू नो दिस इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड अच्छी उच्चतर है लेकिन विच कंप्राइज ऑफ लिविंग हु आर एक्सप्लॉयटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस इंफीरियर नेचर जो इस निम्न प्रकृति के स्रोतों का शोषण एक्सप्लॉयटेशन कर रही है अर्थात वो जीव शक्ति जो है वो आज हमारे सामने भौतिक शरीर या भौतिक प्रकृति का भोग करने का प्रयास कर रही है। अपरा प्रकृति पर का अर्थ होता है जो ऊपर है जो सुपीरियर है और अपरा प्रकृति जो है वो है निम्न कोटि का लोअर इन्फीरियर तो ये सुपीरियर जो है वो इन्फीरियर का भोग करने में ऐसे तो शरीर में जब तक आत्मा नहीं होता उसको भोग क्या करेगा हुई है ना और जब आत्मा है तब आप कुछ खा सकते हो अलग अलग आइटम लेकिन आत्मा ही नहीं रहेगा तो आप भोग कैसे कर पाओगे। तो आत्मा वास्तव में भौतिक संसर्ग में जब आता है प्रकृति के संसर्ग में तब वो इसको भोग करने का प्रयास करता है हम प्रकृति के संसर्ग में आए इसलिए इसको भोग करने का प्रयास कर रहे तो इस तरह से ये भगवान की उच्चतर शक्ति है। सो वी स्टॉप हियर पांच श्लोक हुए इस चैप्टर के तीसरी श्लोक है ज्यादा हैवी नहीं सो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज वी कैन।